पर्व बड़ी सजधज के साथ मनाए जाते हैं।
सन 72 से यहाँ गीता यज्ञ के नाम से एक सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। एक लाइब्रेरी तथा बाल विहार भी खुला है।
52 एड्रियज मॉरिशस मेस्किरीन के मध्यवर्ती फ्रांसीसी द्वीप 52 में सन 1830 में चार भारतीय मजदूरों का एक दल पहुंचा था। उसमें पीछे एक लौटा और तीन वहीं बस गए।
इनके वंशज तथा संबंधी बढ़कर अब बड़ी संख्या में वहां हो गए हैं।
उनका अच्छा व्यापार अब वहां है। बर्मा बर्मा की नस्ल की संस्कृति को देखते हुए नृतत्व विज्ञानी उसे इंडो चाइनीज समन्वय कहते हैं।
मंगोल नस्ल उस क्षेत्र के मूल निवासियों की जलवायु के प्रभाव से रही है।
पीछे वहां भारतीय जन प्रवाह अपनी महान संस्कृति एवं अन्यान्य उपलब्धियों को लेकर जा पहुंचा।
उस संगम का परिणाम उस रूप में सामने आया जिसे वर्तमान बर्मा कहते हैं।
रूसी साहित्यकार नीतिकीव के अनुसार बर्मा और पेगू को उन भारतीयों द्वारा सुव्यवस्थित रूप से बसाया गया जो धर्म प्रसार एवं समृद्धि संवर्धन की दृष्टि से उस क्षेत्र में गए थे।
जिन दिनों अंग्रेज बर्मा में थे उन दिनों भारतीयों की संख्या उस देश में बहुत अधिक हो गई थी।
बर्मी और भारतीय मिलजुल कर उस क्षेत्र की सर्वतोमुखी प्रगति में लगे हुए थे।
इन दिनों रंगून भारतीय बहुल नगर था। सन 1941 में उस देश में 11 लाख भारतीय थे जिनमें 3 लाख तो अकेले रंगून में ही रहते थे।
बर्मा और भारतीय रक्त का सम्मिश्रण निरंतर होता रहा।
इससे किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई।
सन 1942 में जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया तब करीब 4 लाख भारतीय वापस लौट आए।
जब उग्रपंथी सरकार बनी तो उसने भारतीयों को खदेड़ने की नीति अपनाई। फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में उन्हें अपनी संपत्ति और व्यापार छोड़कर लौटना पड़ा। जो स्थायी नागरिक बन गए हैं वे तो वहां रह रहे हैं किंतु अस्थायी नागरिकों की संख्या अब वहां नगण्य ही रह गई है। वर्मा के विकास में भारतवासियों ने आरंभ से ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रंगून यूनिवर्सिटी बनाने में 50 लाख रुपया लगा है जिसमें आधे से अधिक पैसा भारत मूल के लोगों ने दिया है।
कामर्स विभाग की पीठिका पुस्तकालय विशुद्ध रूप से उन्हीं के धन से बना है। कितने ही अस्पताल स्कूल उन्होंने बनवाए और चलाए।
रामकृष्ण परमहंस अस्पताल का रंगून में अभी भी एक साधन संपन्न चिकित्सालय है।
सन 1950 में सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ नामक एक संस्था स्थापित हुई जो बर्मा तथा भारतीय नागरिकों के बीच स्नेह सौजन्य एवं सहयोग उत्पन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयास एवं आयोजन करती रहती है।
श्वेतों में उसका एक अनाथालय और एक बाल अनाथालय और एक बाल सेवाश्रम भी चलता है। मारवाड़ी गुजराती बंगाली एवं मद्रासी लोगों द्वारा बनवाए हुए उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप बर्मा में हजारों हिंदू मंदिर हैं। बौद्ध विहार तो उस देश में फैले ही पड़े हैं। बर्मा में हिंदुओं का एक केंद्रीय संगठन है ऑल बर्मा हिंदू सेंट्रल बोर्ड जिसकी लगभग सभी हिंदू संस्थाएं सदस्य हैं।
बर्मा सरकार उसे 25,000 क्यत्स वार्षिक अनुदान देती है। कार्यकर्ताओं को रेल स्टीमर आदि के निःशुल्क पास भी मिलते हैं। संगठन ने रामायण महाभारत गीता आदि ग्रंथों को बर्मा भाषा में छापा है।
राजा रेड्डियार के बनाए मंदिर तथा स्कूल रंगून में अभी भी गर्वोन्नत मस्तक उठाए खड़े हैं। अजायब घर बनाने में डॉक्टर शून्य सेन का असाधारण योगदान रहा है। रामकृष्ण मिशन ने बर्मा में बहुत काम किया है।
उसका 122 पुलंगों का अस्पताल अच्छा पुस्तकालय और विशाल प्रवचन हॉल देखने ही योग्य है। श्रीलंका
श्रीलंका यूं एक प्रकार से भारत का ही अंग है। पाकिस्तान की तरह कुछ समय पूर्व ही वह अलग हुआ है। आज के दृष्टिकोण से यदि लंका मूल के और भारत मूल के निवासियों का वर्गीकरण किया जाए तो कहना पड़ेगा कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के निवासियों की वहां बहुत संख्या है।
मदुरा त्रिचनापल्ली तेंजोर सलेम कोयम्बटूर तिनावली रामनाड आदि जिलों के निवासियों का लंका प्रवासियों में बाहुल्य है।
यह लोग छोटे बड़े व्यवसाय शिक्षाजीवी शिल्पी एवं श्रमिक स्तर के कार्यों में वहां संलग्न हैं।
चाय बागान और नारियल उद्योग में भी उनका महत्वपूर्ण हाथ रहा है। सन 30 तक लंकावासियों और भारतीयों में पूर्ण स्नेह सौजन्य था। इसके बाद पृथकता हो जाने पर देशी विदेशी का विष वृक्ष वहां भी पनपा फलत लंका में भी भारतीयों के प्रति विद्वेष विकसित होने लगा।
बहुत से भारतीयों को वापस लौटना पड़ा। अब बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों को लंका सरकार ने वापस भेज दिया है। जिन्होंने उस देश की स्थायी नागरिकता स्वीकार कर ली है वे ही वहां बचे हैं। अस्थायी निवास करने वालों की संख्या बहुत कम है।
नेपाल नेपाल में 87% हिंदू 9% बौद्ध 3% मुसलमान और 1% ईसाई धर्मावलंबी रहते हैं।
नेपाल की जनता अधिकतर भारतीय मूल की है। मंगोलियन नस्ल के पुरखे भी वस्तुतः धर्म और रक्त की दृष्टि से भारतीय ही कहे जा सकते हैं।
उस देश का 90% व्यापार भारत के ही साथ है। कुछ समय पूर्व तक भारत और नेपाल के मध्य उन्मुक्त व्यापार था।
प्रांतों में जिस प्रकार चुंगी आदि के थोड़े प्रतिबंध हैं वैसे ही भारत नेपाल के बीच भी थे, पर अब अलगाव की भावना ने क्रमशः प्रतिबंधों को कड़ा करना आरंभ कर दिया है और भारतीयों की गणना विदेशियों में होने लगी है।
विकास, व्यापार संबंधी हस्तांतरण आदि पर कितने ही प्रतिबंध लगाए गए हैं,
फिर भी दोनों देशों की सांस्कृतिक एकता में कोई अंतर नहीं आया है।
भारतीय तत्वज्ञान को विश्वव्यापी बनाया जाए।
आज भौतिकवाद की बाढ़ चरम सीमा पर है। मनुष्य छोटा, बौना होता और सिकुड़ता चला जा रहा है। विलासिता और आपाधापी के अतिरिक्त उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। तुच्छ स्वार्थों के लिए व्यक्ति और राष्ट्र एक दूसरे का सर्वनाश करने पर उतारू है।
बुद्धिवाद, अर्थतंत्र और विज्ञान विकास जिस दिशा में विकसित हो रहे हैं, जिस लिप्सा के लिए लालायित हैं, उस ओर बढ़ते चरण अगले दिनों मनुष्य जाति को सामूहिक आत्महत्या के लिए विवश करेंगे। दुष्प्रयोजनों में लगी हुई हमारी बुद्धि, चेष्टा और संपदा संसार में नारकीय वातावरण उत्पन्न करती चली जा रही है। उसका परिणाम किस दुखद दुर्भाग्य में होगा, उसकी कल्पना करने मात्र से सिहरन उठती है।
जीवन और मृत्यु के निर्णायक चौराहे पर खड़ी मनुष्य जाति कुछ भी करती रहे और हम मूक दर्शक बने देखें, यह उचित न होगा। इतिहास साक्षी है कि विश्व की समग्र प्रगति में भारत ने अपने विकास के आरंभ से ही असाधारण योगदान दिया है। इस देश के देव मानव सदा से अपने को विश्व मानव मानते रहे हैं और क्षेत्र विशेष की परिधि में अपने को सीमित न रखकर समस्त संसार की अवगति को प्रगति में बदलने के लिए भागीरथ प्रयत्न करते रहे हैं। इस देश में निर्वाह की समुचित सुविधाएं रही हैं।
रत्नगर्भा भारत भूमि के वरद पुत्रों को कभी किसी बात का अभाव, दारिद्र्य नहीं रहा।
वे समस्त विश्व को अपना सेवा क्षेत्र मानकर सुदूर भूखंडों में अत्यंत कठिन यात्राएं करते रहे हैं और अविकसित पड़े भूखंडों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अपने ज्ञान विज्ञान का पूरा पूरा अनुदान प्रदान करते रहे हैं।
वन्य जीवों जैसा जीवन यापन करने वाले मनुष्यों को कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, शिल्प, वाहन, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, समाज संगठन, शासन, धर्म संस्कृति आदि से परिचित कराया और उन प्रगति प्रयासों से उन्हें अभ्यस्त बनाकर सुविकसित स्तर तक पहुंचाया। ऐसे अनुदानों ने ही उसे संसार के कोने कोने से जगतगुरु का भाव भरा सम्मान प्राप्त कराया। उसका चक्रवर्ती सांस्कृतिक साम्राज्य दुनिया की इंच इंच भूमि पर छाया हुआ था। यह सब इसलिए संभव हो सका कि यहाँ के निवासी सीमित क्षेत्रों में अपने स्वार्थों को सीमित नहीं रखे रहे, वरन उन्होंने समस्त विश्व को अपना घर परिवार माना और सार्वभौम सुख शांति को अपनी निजी प्रगति मानकर किसी भौतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर नहीं, वरन सर्वजनीन उत्कर्ष के लिए वे अपने अस्तित्व को समर्पित करने में गर्व गौरव अनुभव करते रहे। आज की स्थिति में संसार भूतकालीन पिछड़ेपन की अपेक्षा कहीं अधिक दुर्गतिग्रस्त है। अतीत का पिछड़ापन अन्न, वस्त्र, निवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि की दृष्टि से ही अभावपूर्ण था।
उन दिनों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं सीमित रहने से भी लोग उन परिस्थितियों में भी किसी प्रकार तालमेल बैठा लेते थे और बिना उद्विग्नता की जिंदगी जी लेते थे। आज हम बुद्धि, धन और सामग्री से सुसंपन्न होते हुए भी उस आदिम काल के मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक दहखत परिस्थितियों में पड़े हुए जल रहे हैं, गल रहे हैं। संसार में कहीं भी चैन नहीं, कहीं भी शांति नहीं, कहीं भी संतोष नहीं। उद्वेग और संक्षोभ से आज मनुष्य जाति का प्रत्येक सदस्य बेतरह जल रहा है।
भावनात्मक निकृष्टता, विचारणा और आकांक्षाओं का पशु प्रवृत्ति तक उतर आना, वासना और तृष्णा के लिए सर्वतोभावेन समर्पण, विलासिता और लिप्सा लालसा में चरम सुख की मान्यता, व्यक्तिवादी स्वार्थपरता की प्रबलता, उदारता और आत्मीयता का परित्याग जैसी दुष्प्रवृत्तियों ने मनुष्य को पशु से भी नीचे गिराकर पिशाच बना दिया है। इस स्तर का प्राणी अपनी हलचलों से मात्र अनाचार ही उत्पन्न करेगा और उसके दुष्परिणाम पग पग पर शोक संताप उत्पन्न करने वाले होंगे। निकृष्ट व्यक्ति शारीरिक, मानसिक आदि व्याधियों में ही ग्रस्त रहेगा और निरंतर दुख पाएगा। यही आज की स्थिति का सही विश्लेषण है। विज्ञान ने अनेकानेक सुविधा साधन उत्पन्न कर दिए हैं। आर्थिक प्रगति ने हमें अनेक सुखोपभोग की आकर्षक उपलब्धियां प्रदान की हैं। शिक्षा के विकास ने हमारी बुद्धि को तर्क प्रधान और भली प्रकार से चतुर कुशल बना दिया है।
इस युग की यह उपलब्धियां सर्वविदित हैं।
यदि हमारा चिंतन, व्यक्तित्व और लक्ष्य भी परिष्कृत रहा होता तो निस्संदेह इस धरती पर स्वर्ग से कहीं अधिक संपन्नता और प्रसन्नता बिखरी पड़ी होती, पर हुआ उल्टा ही। जहां समृद्धि बढ़ी वहां सद्बुद्धि का लोप हुआ है।
वस्तुस्थिति यह है कि विकास के नाम पर विनाश के ही गर्त में गिरे हैं।
यदि यही स्थिति कुछ समय और चलती रही तो हम वहां जा पहुंचेंगे, जहां से फिर कभी उबर सकना संभव न हो रहेगा।
आज का भारत भौतिक प्रगति में बेशक पिछड़ गया है। हजार वर्ष की लंबी पराधीनता ने हमारी नस नस तोड़कर रख दी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो संभव था वह हमारी अनुभवहीनता ने करने नहीं दिया। हम कई क्षेत्रों में विशेषतया सामाजिक प्रखरता के क्षेत्रों में अभी काफी पीछे हैं और अपने को समर्थ बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। यह सब होते हुए भी यह एक चुनौती है कि हम अपना घर ही संभालने संजोने में लिप्त न रहें, वरन सारे गांव के छप्परों में जो आग लग रही है उसकी ओर भी ध्यान दें, अन्यथा घर बनाने के हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ चले जाएंगे और गांव के अन्य लोगों के साथ ही हमारा भी सब कुछ जलकर नष्ट हो जाएगा। इस सर्वभक्षी दावानल की ओर से इसलिए आंखें मूंदे नहीं रह सकते कि हमें अपने मतलब से मतलब रखना चाहिए।
अब सारी दुनिया एक है,
एक का विकास तो एक बार दूसरे के पिछड़ेपन को न भी दूर करे पर विनाश की आग उतनी व्यापक होगी जिसमें सभी जलेंगे। पिछले दो महायुद्ध दो दो देशों में आरंभ हुए थे पर उनके दुष्परिणामों ने संसार भर के हर देश को प्रभावित किया।
आज जो अनैतिकता की, उच्छृंखलता की, भोगवाद की, निष्ठुरता, स्वार्थपरता की दावानल धधकी है, उसकी आग से हम शांति प्रिय लोग भी अछूते न रह सकेंगे। कोई चिनगारी हमारे टूटे फूटे घर को भी जलाकर खाक कर देगी और घर बनाने के हमारे सुखद प्रयास अकाल मृत्यु के उदर में समा जाएंगे।
यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि अपना घर बनाने से हमें हाथ खींच लेना चाहिए और विश्व निर्माण में ही सर्वतोभावीन जुट जाना चाहिए। ऐसी सलाह न उचित है और न संभव। यहाँ केवल यह कहा जा रहा है कि हम अपने देश की भौतिक प्रगति के वर्तमान प्रयासों को ही पर्याप्त न माने वरन चिंतन और चरित्र में घुसी हुई विकृतियों के निराकरण के लिए भी ध्यान दें और प्रयत्न करें। यह कार्य हमें अपने देश में तो करना ही है, साथ ही व्यापक क्षेत्र पर भी दृष्टि रखी जाए।
विश्व नागरिकता की, विश्व परिवार की, विश्व मानव की, विश्व एकता की बात को भुला न दिया जाए।
हमारे पूर्वजों की नीति सही थी जिसमें वे घर और बाहर के अंतर को घटाते हुए सर्वजनीन प्रगति के लिए व्यापक प्रयत्न करते थे और दूर देशों को भी अपना कर्मक्षेत्र मानते थे। विश्व को हमने असंख्य अनुदान दिए, उसका बदला हमें कुछ भी न मिला हो ऐसी बात नहीं है।
श्रेष्ठ क्रिया की उत्कृष्ट प्रतिक्रिया ही होती है। संसार को समुन्नत बनाने के प्रयास में भारत की अपनी परिस्थितियां भी सुविकसित हुई थी। विश्व सेवा का विशाल क्षेत्र हमारे अपने क्षेत्र को भी उस सेवा साधना के परोक्ष लाभों से लाभान्वित हुए बिना खाली हाथ न रहने देगा।
आज की स्थिति में भी भारत विश्व का नेतृत्व दार्शनिक क्षेत्र में कर सकता है। उसका अध्यात्म इतना उत्कृष्ट है कि उसे किसी देश जाति और काल की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, वरन सार्वभौम सार्वजनीन और सार्वकालिक कहा जा सकता है। भटकाव को सही राह पर लाने की उसमें पूरी पूरी क्षमता है। संसार के अन्य देशों ने पिछले दिनों हमें बहुत कुछ दिया है। हम और कुछ तो नहीं पर उत्कृष्ट स्तर का ऐसा तत्वदर्शन दे सकते हैं जिससे भटकी हुई मनुष्य जाति अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने और दिशा प्रवाह बदलने के लिए तत्पर हो सके।
यद्यपि यह परोक्ष अदृश्य और सूक्ष्म है फिर भी इतना महत्वपूर्ण है कि सर्वभक्षी दावानल पर अजस्र अमृत बरसा होने जैसा जादुई परिणाम उत्पन्न हो सकता है।
विनाश के मार्ग पर चल रही अंधी घुड़दौड़ विकास के पथ पर मोड़ी जा सकती है। दर्शन मनुष्य जाति का प्राण है, जीवन है, प्रकाश है और बल है।
नास्तिकतावादी भोगवादी दर्शन ने हमें नरपशु बना दिया है। यदि स्थिति उलट दी जाए और जनमानस में आदर्शवादी उत्कृष्टता की मान्यताएं जमने लगे तो स्थिति का कायाकल्प हो सकता है। दुर्बुद्धि की आग में भुन रहे संसार को आज भी भारतीय तत्वदर्शन अध्यात्म बहुत कुछ दे सकता है।
इतना दे सकता है कि मरण को जीवन में बदला जा सके। स्वामी विवेकानंद से एक बार अमेरिका में पूछा गया कि भारत छोड़कर आप वेदांत की शिक्षा देने इतनी दूर क्यों आए। इसके उत्तर में उन्होंने यही कहा कि भारत अभी लंघन से उठ रहा है,
उसे पुरुषार्थ करने और रोटी रोजी कमाने की शिक्षा ही हजम हो सकेगी।
आप लोग शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में काफी आगे बढ़कर इस योग्य बन चुके हैं कि वेदांत की शिक्षा को समझ सकें और उपयोग में ला सकें।
ठीक इसी से मिलता जुलता उत्तर एक बार स्वामी रामतीर्थ ने जापान के लोगों को दिया था।
यह उचित ही है, हम स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपने देश की भी सेवा करें, पर जो लोग इससे अपरिचित हैं किंतु अति उपयोगी तत्वदर्शन को पचा सकते हैं वहां तक प्रकाश क्यों न पहुंचाएं।
विवेकानंद और रामतीर्थ ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से व्यापक क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां विस्तृत की थी। सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी संपत्ति का इसलिए ट्रस्ट बनाया था कि उससे विदेशों में प्रचार कार्य किया जाए।
यह स्वस्थ परंपरा है, भारत की प्राचीन रीति नीति में यह तत्व गहराई के साथ घुसा हुआ है।
कोई कारण नहीं कि वह प्रयास निरर्थक ठहराए जाएं।
ईसाई देशों की अपनी आवश्यकताएं हैं, वहां प्रगति के सारे काम समाप्त हो गए हैं ऐसी बात नहीं है, फिर भी वे इस बात का घोर प्रयत्न करते हैं कि विदेशों में उनकी संस्कृति फैले। इसके लिए वे प्रचुर परिमाण में जनशक्ति और धनशक्ति भी नियोजित करते हैं। इन दिनों भारत में 54 विदेशी राष्ट्रों के धर्म प्रचारक काम करते हैं।
इनमें विदेशी पादरी 9,727, भारतीय पादरी 54,000 और महिला पादरी 25,000 हैं। भारत में 24,494 गिरिजाघर स्थापित हो चुके हैं। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों वर्गों की ईसाइयों की जो संस्थाएं भारत में चलती हैं, उनका विवरण इस प्रकार है। प्राथमिक विद्यालय 7,379, मिडिल स्कूल 1940, हाई स्कूल 1234, कॉलेज 102, छात्रावास 655, अस्पताल 1196, अनाथालय 688।
विदेशों के मुस्लिम धर्म प्रचारक भी बहुत बड़ी संख्या में इस देश में रहते हैं और प्रयत्न करते हैं कि इनका धर्म किसी न किसी प्रकार वैसी ही तेजी से फैले जैसा कि पिछली शताब्दियों में फैला।
अपने देश में आज़ादी मिलने के समय 70 लाख ईसाई थे।
इन दिनों उनकी संख्या 2 करोड़ से अधिक है।
यह उस प्रचार प्रक्रिया का ही परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अनुमानानुसार सन 2000 में भारत की आबादी 1 अरब होगी, जिनमें 45 करोड़ हिंदू, 40 करोड़ मुसलमान और 15 करोड़ ईसाई होंगे।
यह आंकड़े बताते हैं कि अन्य देशवासी, अन्य धर्मावलंबी किस प्रकार अपने देश की सीमा से बाहर भी सांस्कृतिक प्रसार में दिलचस्पी रखते हैं।
ईसाई धर्म को जन्मे 2000 से भी कम वर्ष बीते हैं।
इतने में उसने संसार की एक तिहाई जनता को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया है। अब 400 करोड़ की आबादी इस संसार की है, इसमें से प्रायः 1.5 करोड़ ईसाई हैं।
यह उनके धर्म प्रचार का परिणाम है।
क्रिश्चियन मिशन के लोग प्रचुर धनशक्ति और जनशक्ति इस प्रयोजन के लिए झोंकते हैं, यह देखते ही बनता है। संसार के 2/3 भाग पर ईसाई लोग राज्य करते हैं।
इसमें जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना सांस्कृतिक साम्राज्य पहले से ही कायम किया।
वे आगे आगे बाइबल और पीछे पीछे बंदूक लेकर बढ़े हैं।
धर्म को भले ही आदर्शों की गहनता के कारण उपेक्षणीय माना जाए, पर उसका सांस्कृतिक पक्ष इतना सामर्थ्यवान है कि उसे राजनीति से भी अधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।
मुसलमानी धर्म का जन्म 13वीं शताब्दी पूर्व हुआ, पर उनका विस्तार 200 करोड़ के करीब पहुंच गया है। वे भी निरंतर बढ़ते जाते हैं।
उन्होंने पहले तलवार से अधिकार किया, किंतु पीछे यह आवश्यक समझा कि यदि अपना अस्तित्व रखना है तो उन विजित देशों को सांस्कृतिक बंधनों में दृढ़ता से बांधा जाए। राजसत्ता को बढ़ाने और जमाने के उन्होंने जितने प्रयत्न किए, उससे ज्यादा शक्ति इस बात पर खर्च की कि अपनी जड़ें सांस्कृतिक आधार पर मजबूत बनाई जाएं जो गहरी धंस जाएं। इसका परिणाम प्रत्यक्ष है।
जहां अब मुसलमानी राज्य नहीं है, वहां के लोग भी अपनी धर्म भूमि की, जाति भाइयों की उचित अनुचित हिमायत करते हैं। इसकी एक झांकी असहयोग आंदोलन के दिनों मिली, भारत में खिलाफत के समर्थन में जो लहर बही थी। बंगाल और कश्मीर के संबंध में अधिकांश मुसलमानों का जो रुख देखा गया, उससे विदित होता है कि इन लोगों में देशभक्ति से भी सांस्कृतिक भक्ति की जड़ें अधिक गहरी होती हैं। हम इन तथ्यों की ओर से आंखें मूंदे हुए हैं। हिंदुओं की संख्या निरंतर घट रही है। जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही है, उसकी तुलना में सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र दहखत स्थिति में घट रहा है। भारत में जो स्थिति है, उसे देखते हुए लगता है कि अन्य संस्कृतियां अगली आधी शताब्दी में ही उसकी अपनी संस्कृति को पछाड़ देंगी और बहुमत से हटाकर अल्पसंख्यकों में बदल देंगी।
उपेक्षा और अन्यमनस्कता का यही स्वाभाविक परिणाम है।
प्रवासी भारतीयों की स्थिति और भी दयनीय है। वे अपनी मातृभूमि से बहुत दूर पड़ गए हैं। ईसाई और इस्लामी प्रभाव से वे घिरे हुए हैं।
अपना आकर्षण और पाचन उन्होंने गंवा दिया।
वे दूसरे धर्मानुयायियों को अपने धर्म में लाने का साहस नहीं कर पाते।
कोई भी भूले भटके आ भी जाए तो उसे पचा नहीं पाते।
उल्टे अपने लोग दूसरे के प्रभाव में द्रुत गति से जा रहे हैं। अपनी ओर से कोई पोषण नहीं,
उनका भावनात्मक सिंचन नहीं। वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं जिनसे उन्हें अपनी आस्थाएं यथावत बनाए रहने एवं उन्हें सुदृढ़ परिपक्व बनाए रहने की प्रेरणा मिले।
इस स्थिति में अपनी सांस्कृतिक गरिमा को भूल जाने वाले लोग यदि अन्य धर्म संस्कृतियों में विलीन होते चले जाएं, तो इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। जो नाम मात्र के हिंदू रह गए हैं, उनकी आस्थाएं भी क्रमशः दुर्बल होती चली जा रही हैं और यह संभावना स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। प्रवासी भारतीयों में से अधिकांश एक शताब्दी के भीतर ही अन्य धर्मानुयायी बन जाएंगे। हमारे कंधों पर इन विषम परिस्थितियों के 2 तकाजे हैं। एक तो मरणोन्मुख मानवीय सभ्यता की प्राण रक्षा के लिए भोगवादी अनास्थाओं के कालगाल में प्रवेश करती हुई आदर्शवादिता को जीवित रखने के लिए उस धर्म अध्यात्म की संजीवनी बूटी अपेक्षित है जो भूतकाल में समस्त विश्व को प्रकाश और प्राण प्रदान करती रही है।
विज्ञान और बुद्धिवाद के अस्त्र मनुष्य के लिए आत्मघाती भस्मासुर बन रहे हैं।
इन उन्मत्त गजकुंजरों को यदि धर्म के अंकुश से नियंत्रित न किया गया, तो वे स्वयं मरेंगे और अपने ऊपर बैठी सवारी को चीर फाड़कर रख देंगे।
आज मानवीय जाति की विशेषतया प्रगति संपन्न देशों की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उन्हें मदोन्मत्त मनस्थिति से उबारने के लिए अध्यात्म का शामक अमृत जल पिलाया जाए। विनाशकारी विभीषिकाओं को उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं में परिणत करने का उपाय है भावनावादी तत्व दर्शन के प्रभाव क्षेत्र में समस्त मनुष्य जाति को लाया जाए।
इस प्रयोजन को संसार की श्रेष्ठतम वह संस्कृति ही पूरा कर सकती है जिसे भारतीय संस्कृति कहते हैं।
वस्तुतः वह मानवीय कृति है, सार्वभौम, सार्वजनीन और सार्वकालिक है। उसकी जानकारी लोगों को मिलती रही होती तो निस्संदेह समस्त संसार उसी की छांव में बैठकर मोद मना रहा होता। पूर्वजों के महान उत्तराधिकार का दूसरा तकाजा यह है कि हम अपने महान पूर्वजों के उन चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करें जिनके अनुसार उन्होंने घर बनाने के अतिरिक्त बाहर प्रकाश फैलाने का भी प्रयत्न किया था।
आज के विश्व में सबसे बड़ी आवश्यकता उस अमृत वर्षा की है जिससे उसके मूर्छित प्राणों में पुनः नव जीवन संचार हो सके। यह कार्य भारतीय तत्वज्ञान का आलोक सुदूर संसार में फैलाने से ही हो सकता है।
यह उद्बोधन अपने देश में तो होना ही चाहिए, पर उसे किसी क्षेत्र विशेष तक प्रतिबंधित न किया जाए, उसे जहां भी उपजाऊ भूमि मिले वहीं बोया जाए।
आपत्ति धर्म के अनुसार उसे अधिक बदहवास लोगों को पहले देने की बात भी सोची जा सकती है ताकि वे विकृतियों के उन्माद में अपना और पड़ोसियों का सर्वनाश कर डालने से रुक सकें।
संसार भर में भारतीय संस्कृति के अध्यात्म तत्वज्ञान का विस्तार करना आज का हमारा एक परम पवित्र सांस्कृतिक कर्तव्य है।
इस कर्तव्य में एक छोटी सी कड़ी और जुड़ जाती है जब हम प्रवासी भारतीयों की स्थिति को देखते हैं।
समुद्र पार उनकी संख्या 350 लाख के करीब है। समुद्री सीमाओं से भीतर नेपाल, भूटान, सिक्किम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लंका, बर्मा आदि देशों में भारत मूल के हिंदी धर्मानुयायियों की संख्या प्रायः 10 करोड़ तक जा पहुंची है।
वे राजनीतिक दृष्टि से किसी देश के नागरिक क्यों न हो, वस्तुतः वे सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के ही नागरिक हैं। उनकी नसों में भारतीय रक्त ही प्रवाहित हो रहा है। उनका सांस्कृतिक पोषण करना बड़े भाई के नाते हमारा कर्तव्य है। सूत्र टूट जाने से वे दाने आज नहीं तो कल बिखर ही जाएंगे। जलते संसार पर तत्वज्ञान का अमृत छिड़कने और प्रवासी भारतीयों का सांस्कृतिक पोषण करने के दोनों उत्तरदायित्व एक ही योजना के अंग बनाए जा सकते हैं और हमारी भावी सांस्कृतिक सेवा योजना को दोनों आवश्यकताओं को पूरी करने योग्य समन्वित बनाया जा सकता है। प्रवासी भारतीयों को प्रथम संपर्क मिलें, उनसे घनिष्ठता बढ़ाएं, उत्साह पैदा करें और पैर जमाने योग्य सुविधा प्राप्त करके उन क्षेत्रों में सरलतापूर्वक तत्वज्ञान की प्रकाश किरणों का विस्तार करना आरंभ कर दें।
यह अपेक्षाकृत सरल है।
एकांकी प्रचार उथला रहेगा, जब तक ईसाई मिशनरियों की तरह डेरा डालकर कहीं रहा नहीं जाएगा तब तक कोई ठोस काम नहीं हो सकेगा।
यदा कदा जा पहुंचना और लेक्चर झाड़कर वापस चले आना एक मनोविनोद मात्र है। उससे क्षणिक उत्साह मात्र भले ही पैदा हो, कहने लायक परिणाम नहीं निकल सकता।
काम तो स्थिर और अथक प्रयत्नों से ही होता है।
विश्वव्यापी सांस्कृतिक प्रसार के लिए हमारी सुगठित योजनाएं इसी स्तर की होनी चाहिए, इसी आधार पर बननी चाहिए।
इस संदर्भ में हमें प्रवासी भारतीयों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और उन्हें सांस्कृतिक पोषण देने की बात को प्रथम चरण की तरह हाथ में लेना चाहिए। दूसरा कदम उठाने में हमें उसी आधार के सहारे सुगमता होगी। विश्व के कोने कोने में कुछ एक को छोड़कर प्रायः सभी देशों में भारतीय मूल के भारतीय धर्मानुयायी बसे हुए हैं।
यदि उनका सांस्कृतिक पोषण करने को, उनको अपने धर्म और आध्यात्म की आदर्शवादी परंपराओं का उद्बोधन कराने का लक्ष्य लेकर वहां जाया जाए तो हमारी सद्भावना उन्हें अवश्य ही प्रभावित करेगी। वे हमारे सहयोग का लाभ लेना चाहेंगे और अपना सहयोग देना चाहेंगे।
इस उभयपक्षीय अनुदान के सहारे वे सरंजाम खड़े हो सकते हैं जिनसे उन देशों के जनमानस में भारतीय धर्म की मानव धर्म की प्रकाश किरणों का प्रवेश कराया जा सके। प्रवासी भारतीयों में काम करते हुए हमें एक दृष्टिकोण और विकसित करना होगा कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को एक ही वस्तु के दो पक्ष माना जाए। रुपये में एक तरफ कुछ अलग अंकन होता है और दूसरी तरफ कुछ और। इस भिन्नता के रहते हुए भी दोनों की अविच्छिन्न एकता में कोई अंतर नहीं आता। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अनेकानेक शाखा पल्लवों में से एक है। हम अपनी ओर से एकता के प्रयास न करेंगे और थोड़ी सी प्रथा मान्यताओं के कारण उन्हें भिन्न धर्मानुयायी मानेंगे तो फिर एक संकीर्णता जाति उपजाति और गोत्र उपगोत्रों में विभाजित करते करते हमें सर्वथा एकांकी बना देगी। अपने विशाल सांस्कृतिक परिवार को हमें एक समझना होगा और प्रतकवाद का विष जहां भी घुस गया है वहां से उसे उखाड़ फेंकना होगा।
बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग हुआ,
अब सिख संप्रदाय की ओर से भी ऐसी ही बातें कह जाने लगी हैं।
कुछ समय पूर्व जैन समाज से भी ऐसी ही हल्की पतली आवाजें उठी थी।
जाति पाति के नाम पर देश के टुकड़े टुकड़े कर डालना जितना बुरा है उससे भी बुरा संप्रदाय के आधार पर विशाल भारतीय संस्कृति को क्षत विक्षत करना है। पिछले दिनों हमने गलतियां करके बौद्धों को यह सोचने का अवसर दिया कि वे हिंदू धर्म से अलग हैं।
अब उस भूल को सुधारने का उपयुक्त अवसर है। हमारी विश्व संस्कृति सेवा अभियान का एक अंग यह होना चाहिए कि संप्रदाय विभेदों को महत्व तनिक भी न दें।
सांस्कृतिक मूल के समस्त मत मतांतरों को एक मानकर चलें। शरीर में कई तरह के कई आकार प्रकार के अवयव होते हैं, पर इस कारण उन्हें शरीर से अलग तो नहीं समझा जा सकता। इंडोनेशिया, मलेशिया के एक बड़े भाग में इस्लाम ने जड़ें जमा ली। जापान, सिंगापुर, हांगकांग आदि में ईसाई बढ़ रहे हैं। इतना सब होते हुए भी बौद्ध धर्मानुयायियों की संख्या इतनी अधिक है कि इन्हें हिंदू धर्म के साथ जोड़ा जा सके तो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या भारतीय धर्मानुयायियों की हो जाएगी। विदेशों में गए भारतीय सिखों की संख्या भी कम नहीं है। उनमें श्रद्धा और विश्वास कहीं अधिक है। उनके गुरुद्वारे संसार के हर कोने में वहां बसे प्रवासी सिखों द्वारा बनाए गए हैं।
उनके क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक श्रद्धा, जागरूकता, उत्साह से भरे रहते हैं।
उन्हें जीवन की उपयोगिता प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। इन सिखों में जो अलगाव की भावना प्रवेश करती जा रही है, उसे हमारी उदार और विशाल दृष्टि द्वारा सहज ही हल्का किया जा सकता है। यह खाए आसानी से पाटी जा सकती है। अभी भी इसके लिए अधिक देर नहीं हुई है।
हमें हिंदू धर्म का ऐसा सांचा खड़ा करना चाहिए जिसमें बौद्ध सिख ही नहीं प्रत्येक भारतीय सांस्कृतिक मूल को लेकर उत्पन्न हुए सभी संप्रदायों को एकता के सूत्र में बांधा जा सके।
थोड़ा साहस करने पर पारसी धर्म भी इसी श्रृंखला में आ जाता है। उसमें अग्नि पूजा से लेकर अन्य अनेक परंपराएं एवं मान्यताएं ऐसी हैं जिन्हें देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस संप्रदाय को मूल हिंदू धर्म से बिछुड़े अभी बहुत समय नहीं हुआ है।
इस विशाल हिंदू धर्म का स्वरूप ही देश में और विदेशों में भारतीय संस्कृति के क्षत विक्षत अवयवों को एक सूत्र में बांध सकेगा, एक परिवार के अविच्छिन्न सदस्य बना सकेगा।
हमें ऐसी समन्वित सार्वभौम हिंदू धर्म संस्कृति का ढांचा खड़ा करना चाहिए और उसे न केवल देश में वरन विदेशों में भी प्रवासी भारतीयों में पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए।
तभी उससे अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। तभी वह अन्य धर्मावलंबी जनता को प्रभावित कर सकेगा। हम हिंदू धर्म को सार्वभौम मानव धर्म की भूमिका निभा सकने योग्य सर्व समर्थ बनाना चाहेंगे और वह कार्य कुछ दिनों में पूरा होकर अपने परिष्कृत रूप में सामने आ जाएगा।
पिछले दिनों भी हमारे तथाकथित धर्म प्रचारक प्रवासी भारतीयों में कुछ प्रचार करने जाते रहे हैं। उनके जाने से लाभ के स्थान पर हानि अधिक पहुंची है। वे संप्रदाय विशेष के प्रतिनिधि बनकर पहुंचते रहे हैं और अपने मत को ही हिंदू धर्म बताते रहे हैं।
इससे उनके अनुयायी तो प्रसन्न हुए पर अन्य मत वाले रुष्ट हो गए। एकता के स्थान पर पृथकता ही उन्होंने अधिक फैलाई। वहां भी अपने संप्रदाय विशेष के शिष्य मुने और मंदिर मठ बनाए, संस्थान खड़े किए। भारत में कोई मंदिर आश्रम बनाने के बहाने मोटी दान दक्षिणा समेटकर वापस चले आए।
प्रवासी भारतीयों में गए धर्म प्रचारकों में से अधिकांश का स्वरूप और क्रियाकलाप ऐसा ही रहा है। अध्यात्म के नाम पर भी ऐसे ही खेल खिलौने खड़े किए जाते रहे हैं।
कुछ एक आसन, कुछ एक प्राणायाम, कुछ एक कर्मकांड, बस इतनी ही उनकी अध्यात्म भूमिका रही है।
इसी के लंबे चौड़े चमत्कार बताए गए और न जाने क्या मिलने के ढोल पीटे गए। विदेशों में भारतीय तत्वज्ञान और अध्यात्म के प्रति अभी भी कौतूहल भरी जिज्ञासा है।
इससे लाभ उठाकर इन योग प्रचारकों ने न जाने क्या से क्या ढकोसले खड़े कर दिए।
आरंभ में उनका बहुत स्वागत हुआ और समर्थन मिला,
पर जब नशा उतरा और ढोल की पोल खुली तो सारा सिराजा बिखर गया। ऐसे भाग प्रचारकों ने विलासिता के बड़े चढ़े ढांचे सहज ही खड़े कर लिए।
विदेशों में भावुकता भी है और संपन्नता भी। योग के नाम पर उसका दोहन करने से इन तथाकथित योगियों को अनायास ही सफलता मिल गई है।
उनका ढोंग ही पुज गया।
इन धर्म प्रचारकों और योगियों की प्रवासियों में तथा अन्य धर्मावलंबी विदेशियों में अच्छी खासी धमाचौकड़ी रही है।
कुछ लोग राजनीतिक या अन्य महत्वाकांक्षाएं लेकर भी वहां गए हैं। कुछ का सैर सपाटा करना और अपनी विश्व सेवा की विज्ञापनबाजी करना भी एक प्रयोजन रहा है।
ऐसे लोग बहुत ही कम गए हैं जिनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति की प्रकाश किरणें विश्व के कोने कोने में पहुंचाना और प्रवासी भारतीयों की निष्ठा का परिपोषण करना भर रहा हो और जिनके पीछे कोई क्षुद्र प्रयोजन न रहा हो। ऐसे लोग रहे हैं, पहुंचे हैं, पर उनकी संख्या बहुत स्वल्प रही है। अधिकांश लोग ऐसे ही गए हैं जिन्होंने अश्रद्धा उत्पन्न की है, भ्रांति फैलाई है और विभेद की खाई चौड़ी की है। इस दिशा में अब तक हुए प्रयासों को इस स्तर का नहीं माना जा सकता जिस पर पहुंचकर ईसाई मिशनरी संसार भर में जाते हैं, वहां बसते हैं, असाधारण कष्ट सहते हैं और अपने आप को अनन्य श्रद्धा के साथ मिशन के लिए समर्पित होकर प्रसन्नतापूर्वक गला दिया करते हैं। यदि ऐसा रहा होता तो हम प्रवासी भारतीयों को आज की अपेक्षा कहीं अधिक संस्कृतिनिष्ठ पाते और विदेशों में भारतीय तत्व ज्ञान के प्रति झुकाव हजारों गुना अधिक पाया जाता।
दुर्भाग्य ही है कि हमारे विदेशों में गए हुए धर्म तथा अध्यात्म प्रचारक कुछ संतोषजनक प्रतिक्रिया उत्पन्न न कर सके।
समय आ गया है कि हमें नए सिरे से इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए और नए साहस के साथ कदम बढ़ाने चाहिए।
युग निर्माण योजना के संचालक विदेश यात्रा पर निकले भी और अभीष्ट लक्ष्य के लिए कुछ कदम बढ़ाए भी। उनके थोड़े से प्रयास से यह विश्वास उत्पन्न किया कि यदि सही योजना और उद्देश्य लेकर कोई कुछ करना चाहे तो उसका निश्चित रूप से स्वागत होगा। विश्व कल्याण और प्रवासी स्नेह सिंचन उभयपक्षीय कार्यक्रमों का समन्वित स्वरूप यदि हमारी भावी योजना बन सके तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस आधार पर हमारा सेवा क्षेत्र कायम होगा और उसी अनुपात से हम अनेक प्रकार लाभान्वित भी होंगे। बुद्ध के अनुयायियों ने इसी प्रयोजन के लिए दुस्साहसपूर्ण कदम बढ़ाए थे। उनका त्याग बलिदान निरर्थक नहीं गया। यदि एशिया में पिछले दिनों नास्तिकवाद की लहर न आती तो वह इस महाद्वीप का सर्वप्रधान धर्म रहा होता।
अभी भी उन प्रयासों की प्रतिक्रिया कोटि कोटि मनुष्यों को शांतिदायक प्रेरणाएं दे रही है।
बौद्ध धर्म के प्रसार ने संसार के बड़े भाग की धर्म श्रद्धा भारत भूमि के साथ जोड़ी थी। अभी भी लाखों तीर्थयात्री इस देश की पुण्य भूमि की रज अपने मस्तक पर चढ़ाकर धन्य होते हैं। इस भाव श्रद्धा का प्रत्यक्ष न सही परोक्ष मूल्य बहुत भारी है।
सांस्कृतिक परिवार किसी न किसी रूप में एक दूसरे के सहयोगी ही रहते हैं। आड़े वक्त काम आते हैं, कम से कम विपरीत तो नहीं पड़ते। नेपाल और भारत में कोई राजनैतिक विरोध कभी हो भी जाए तो भी वे सांस्कृतिक एकता के प्रगाढ़ बंधनों में बंधे ही रहेंगे। यही बात अन्य देशों में भी लागू हो सकती है।
जहाँ भी हम अपने दर्शनों की छाप बैठा सकेंगे वहाँ की सद्भावना हम सहज ही उपार्जित कर लेंगे। उसके परोक्ष लाभ कितने हो सकते हैं यह चर्चा का नहीं, दूरदर्शिता और गहरी दृष्टि से सोचने समझने का विषय है। यह तो छोटे और सामयिक लाभ हुए।
मूल लक्ष्य इन बातों से बहुत ऊंचा है। लोक चेतना को आदर्शवादी चिंतन और कर्तृत्व में नियोजित करके हम संसार की, समय की, मनुष्य की कितनी महान सेवा साधना करते हैं, इस पर जितना अधिक विचार किया जाए उतना ही उसका अधिक महत्व सामने आता जाएगा।
प्रवासी भारतीयों को, भारत माता के बिछुड़े पुत्रों को उनकी धर्मभूमि का भावभरा वात्सल्य मिले, यह हर दृष्टि से उचित और आवश्यक है।
हमें युग की इस महती मांग पूरा करने के लिए कुछ ठोस प्रयास करना ही चाहिए। इस संदर्भ में सोचा यह गया है कि युग निर्माण योजना के अगले कदम इस दिशा में भी उठे। प्रस्तुत पुस्तक को इसी दृष्टि से लिखा और छापा गया है कि हम अतीत में भारतीय तत्वदर्शियों द्वारा किए गए उन महान कार्यों को देखें और समझें जो उन्होंने देश की सीमित परिधि से बाहर निकलकर समस्त विश्व की सर्वतोमुखी सेवा सहायता करने के लिए उठाए थे।
इस दिशा में उन्होंने कितने त्याग और बलिदान प्रस्तुत किए थे और उन उत्कट प्रयासों को कितनी सफलता मिली थी, उसे एक दृष्टि से फिर देखा जाए और उस महान परंपरा के निर्वाह के लिए आवश्यक उत्साह प्राप्त किया जाए।
आज उन प्रयासों के अनुकरण की, अनुगमन की महती आवश्यकता है।
उन दिनों यातायात, भाषा, सिक्का आदि की भारी असुविधा थी।
आज की स्थिति अपेक्षाकृत बहुत सुविधाजनक हो गई है। यदि भीतर से कुछ उमंग उठे तो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उपरोक्त प्रयोजन के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। समय की चुनौती इस दिशा में साहसिक कदम बढ़ाने के लिए हमें बाध्य करती है। हमें विदेशों में अपने सांस्कृतिक दूतावास पहुंचाने चाहिए।
विवेकानंद और रामतीर्थ ने जो परंपराएं कायम की थी उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। भवानी दयाल सन्यासी, सत्यदेव परिव्राजक, टीओएलओ वासवानी ने इस दिशा में पिछले दिनों विदेशों में सांस्कृतिक संदेश सुनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उस प्रवाह को अवरुद्ध नहीं होने देने चाहिए।
योजनाबद्ध रूप से इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए।
व्यक्तिगत रूप से जाने वाले धर्म प्रचारकों का क्रम स्वेच्छा संचालित होता है। प्रायः वे सीमित उद्देश्य लेकर जाते हैं।
उन्हें आर्थिक व दूसरे साधन भी स्वयं ही जुटाने पड़ते हैं। ऐसी दशा में उनके चिंतन और क्रियाकलाप दोनों में ही अटपटापन आ जाता है। ईसाई पादरियों की तरह हमारे मिशनरी भी निश्चित होकर अभीष्ट कार्य में अपना पूरा ध्यान और पूरा प्रयास केंद्रित करें, तभी कुछ ठोस काम हो सकता है।
युग निर्माण योजना सोचती है कि हमें अपना मिशन बाहर भेजने के लिए भी योजना बनानी चाहिए।
अपने देश में जिस बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक सुधार की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता समस्त संसार को है। भले ही सुधार के लिए जिस प्रकार कार्य अपने देश में हमें करना है उससे परिस्थितिवश अन्य देशों में भिन्न प्रकार का हो। कहा जा चुका है कि विदेशों की अन्य धर्मावलंबी और अन्य संस्कृतियों की मान्यता वाली जनता के गले सीधे ही अपना तत्वज्ञान उतार सके, यह कठिन है।
प्रथम चरण में प्रवासी भारतीयों से संपर्क साधना पड़ेगा, उनका सांस्कृतिक पोषण करना पड़ेगा।
उनके सहयोग से अपने मिशनों को मिशनरियों को पैर टिकाने की जगह मिल जाएगी और ऐसे लोगों के पते मिल जाएंगे जो पहले से भी भारतीय तत्वज्ञान से परिचित रहे हैं और उसके प्रति सद्भावना रखते रहे हैं।
ऐसे लोगों के संपर्क को घनिष्ठ बनाकर इस स्तर तक विकसाया जाएगा कि उनका सहयोग भी मिलने लगे।
इस प्रकार अन्य देशवासियों में हम अपनी बात इस प्रकार कह सकेंगे कि उनके गले में उसे उतारना सरल और संभव हो जाए। इस संदर्भ में हमें एक बार समस्त विश्व में फैले हुए प्रवासी भारतीयों का पर्यवेक्षण करना पड़ेगा कि उनकी इन दिनों क्या स्थिति है। इस जानकारी के आधार पर ही उनके साथ संपर्क बनाने के आधारों और कार्यक्रमों की योजना बनाई जा सकेगी। सब भेड़ें एक लाठी से नहीं हांकी जा सकती हैं। हर देश में प्रवासियों की भिन्न परिस्थितियां हैं, उन्हीं के अनुरूप प्रचारक की योग्यता तथा तैयारी होनी चाहिए, अन्यथा वह असफल होकर वापस लौटेगी। ईसाई मिशनरियों ने इस संबंध में पूरी पूरी जानकारियां एकत्रित कर रखी हैं। जहां उनके कार्य हो रहे हैं वहां भेजे गए पादरियों को कार्यक्षेत्र की पूरी जानकारी दी गई है। इसके लिए उन लोगों ने सुविस्तृत खोजबीन की है और आवश्यक जानकारी देने वाले ग्रंथ छापे हैं। उसी ज्ञान के सहारे पादरी लोग अन्य देशों में जाकर वहां की परिस्थिति के अनुसार कुछ काम कर सकने में समर्थ होते हैं। उसी पद्धति का अनुकरण हमें भी करना होगा।
हर देश की अलग न सही एक ही स्थान में सारे संसार में रहने वाले प्रवासियों की स्थिति का, वर्तमान परिस्थितियों का सुविस्तृत चित्रण करने वाला एक ग्रंथ तो होना ही चाहिए।
ऐसा ग्रंथ किसी दफ्तर में बैठकर नहीं लिखा जा सकता, वरन उसके लिए कम से कम एक दौरा तो पर्यवेक्षण के लिए करना ही होगा।
दुर्भाग्य की बात है कि प्रवासी भारतीयों की वर्तमान स्थिति का बोध कराने वाली एक भी सर्वांगपूर्ण पुस्तक उपलब्ध नहीं है।
जो बहुत दिन पहले छपी थीं वे अब बहुत पुरानी हो गई हैं।
जो सीमित जानकारियां उनमें थीं वे वैसे भी अपर्याप्त थीं।
उनमें भारत से विदेश पहुंचने के कारणों और वहां उनकी दुर्दशा का ही प्रधान रूप से चित्रण था।
उन्हें पढ़कर कोई इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता कि जिसके द्वारा वहां की वर्तमान स्थिति को जाना जा सके और वहां क्या किया जाना चाहिए, किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसकी क्रमबद्ध योजना बनाई जा सके। छुटपुट लेखों का संग्रह किया जाए तो भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि परिस्थितियां बेतरह बदल रही हैं।
पूर्वी अफ्रीका के युगांडा देश में कुछ वर्ष पूर्व भारतीयों की जड़ें बहुत मजबूत थीं और उनका उस देश के व्यवसाय में अच्छा प्रवेश था। अब उन्हें वहां की फौजी सरकार ने पूरी तरह उखाड़ दिया है। वियतनाम में चले लंबे युद्ध ने उस क्षेत्र में बसे प्रवासी भारतीयों की स्थिति को उलट पुलट कर रख दिया है। अभी तक लोगों को बाबा आदम के जमाने की जानकारियां ही प्राप्त है और पुस्तकों तथा लेखों में हमें उसी की झांकी मिलती है। सच तो यह है कि इस दिशा में अब तक कुछ सर्वांगपूर्ण कार्य योजनाबद्ध रूप से किया ही नहीं गया।
प्रवासी भारतीयों के संबंध में एक अच्छी पुस्तक सी जीरो कांडाए द्वारा लिखित, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस तथा इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई थी, जिसका नाम था इंडियन ओवरसीज 1938-1949।
उसे पढ़ने से यह जाना जा सकता है कि लेखक ने श्रमपूर्वक जानकारियां एकत्रित की हैं।
दूसरा वैसा ग्रंथ देखने को नहीं मिला। सन 38 से 49 तक का समय बीते लंबा अरसा गुजर गया।
इतने समय में जो परिस्थितियां बदली हैं, उनकी जानकारी सुदूर नक्षत्रों से चलने वाली प्रकाश किरणों की तरह अभी हम तक नहीं पहुंच पाई हैं।
प्रथम प्रयास हमारा धर्म प्रचार का नहीं, वरन विदेशों में प्रवासी भारतीयों की वर्तमान स्थिति, सांस्कृतिक आवश्यकता, उनके लिए अभीष्ट साधन जुटाए जाने की सूचना संग्रह करने की होनी चाहिए।
हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि प्रथम बार उस देश में जाने पर किन व्यक्तियों और किन संस्थाओं का सहारा लेकर किस प्रकार कहां पैर रखने की जगह बन सकती है और आगे किस प्रक्रिया को अपनाकर किस प्रकार क्या कार्य किया जा सकता है।
यह प्राथमिक आवश्यकता है। वहां कम से कम 1,00,000 रुपया मार्ग व्यय आदि के लिए भी चाहिए। पर्यवेक्षण का कार्य सुचारू रूप से कर सकने योग्य व्यक्तियों की अपने पास कमी नहीं, पर मार्ग व्यय के लिए आवश्यक व्यय तो चाहिए ही। उसे जुटाने का कोई साधन बन जाए तो समझना चाहिए कि आरंभिक चरण पूरा हो गया।
संग्रहित रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर विचारशील लोगों से कहा जा सकेगा कि तैयारी किस प्रकार की जानी है और उसके लिए क्या साधन जुटाए जाने हैं।
सही सूचना उपलब्ध होने पर भारत का विचारशील और उदार वर्ग अवश्य ही उसका महत्व समझेगा और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देगा। मोटी रूपरेखा यह है कि प्रवासी भारतीयों के सांस्कृतिक पोषण के लिए हर देश की स्थिति के अनुसार उनकी वर्तमान मान्यताओं के साथ तालमेल बैठाते हुए वहां की प्रचलित भाषा में ऐसा साहित्य छापा जाना चाहिए जो उनके वर्तमान ज्ञान को ऊंचा उठा सके और भारतीय तत्वज्ञान की विशेषताएं, गरिमाएं एवं उपयोगिताएं उनके गले उतार सके। अन्य धर्मावलंबियों के तर्क और आधार आजकल बहुत विकसित हो चुके हैं, सामान्य बुद्धि को भली प्रकार प्रभावित करते हैं।
उनकी तुलना में हिंदू धर्म के पक्ष में केवल घिसी पिटी परंपराएं ही शेष हैं।
उहापोह और विचार मंथन का प्रश्न जहां आता है वहां हिंदू पिछड़ जाता है,
क्योंकि इस प्रकार सोचा और बताया ही नहीं गया कि वह अपनी विशिष्टताओं को समझ सके और दूसरों को समझा सके। अपनी यथार्थ मान्यताओं एवं परंपराओं को ही हम भूल गए हैं।
मध्यकालीन अंधकार युग की मूल मान्यताएं और विकृतियां हमारे पल्ले बंधी हैं।
उन्हीं को हिंदू धर्म कहा जाता है। इसमें भी इतने परस्पर विरोधी मतांतर हैं कि यह समझना कठिन पड़ता है कि वस्तुतः हिंदू धर्म है क्या, उसकी अगणित विरोधी मान्यताओं में से कौन वास्तविक है और कौन अवास्तविक।
इस संदर्भ में कम से कम एक ग्रंथ तो ऐसा होना चाहिए जो भारतीय धर्म की महान परंपराओं को शास्त्र प्रमाण ढंग से प्रस्तुत कर सके और एक सामान्य बुद्धि का हिंदू समझ सके कि उसके सुविस्तृत शास्त्र समुद्र का सार क्या है।
वह सार ऐसा होना अपेक्षित है जो आज की परिस्थितियों में भी सार्वभौम, सार्वजनीन और सर्वकालीन कहा जा सके।
हिंदू धर्म का सप्रमाण समग्र परिचय देने वाली एक भी सर्वांगपूर्ण पुस्तक हमारे सामने नहीं है, यह कितनी लज्जा की बात है।
हम किस प्रकार हिंदू धर्म का प्रचार प्रवासियों और समस्त विश्व में करें, अभी इतना आधार तक नहीं बन पड़ा है। परस्पर विरोधी मान्यताओं में से किसी एक को लेकर चलने पर तो उल्टा विग्रह खड़ा होता है।
अपने ही लोग बिदकते हैं, फिर बाहर वाले उसे क्यों कर प्रमाणित मानेंगे।
भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति के रूप में, भारतीय धर्म को मान्य धर्म के रूप में प्रस्तुत करने वाले एक सर्वांगपूर्ण ग्रंथ की रचना करने में इन दिनों युग निर्माण योजना के सूत्र संचालक लगे हुए हैं।
यह कार्य पूरा हो जाने पर एक सुनिश्चित पृष्ठभूमि बन जाएगी और यह कहा जा सकेगा कि भारतीय तत्वज्ञान, धर्म और अध्यात्म यह है, हम इसका विश्वव्यापी प्रचार करना चाहते हैं।
इसमें प्राचीन काल की तरह अर्वाचीन समस्याओं को सुझाने की पूरी शक्ति है। हर कसौटी पर खरा सिद्ध होने वाला ऐसा भारतीय धर्म आज की जलती आग को बुझा सकने में समर्थ हो सकता है और अगले दिनों विश्वधर्म के रूप में सार्वभौम मान्यता प्राप्त कर सकता है।
हिंदू धर्म एक समुद्र है।
इसके आचार विचार में, प्रथा परंपराओं में पूर्व पश्चिम जितना भेद है, विदेशों में हमें अपने धर्म का ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें सर्वत्र एक रूपता देखी जा सके। मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्ध आदि धर्मों की कुछ मान्यताएं एवं प्रथा परंपराएं हैं जिन्हें संसार के किसी भी कोने में यत्किंचित हेरफेर के साथ देखा जा सकता है। हमारे देवता, मंत्र, ग्रंथ, उपासना विधान, पर्व त्योहार, संस्कार प्रचलन इतने बिखरे हुए हैं कि उनमें एकता की संगति मिलाना अत्यंत कठिन पड़ता है।
समय की मांग है कि समस्वरता और एकरूपता वाला ऐसा सर्वांगपूर्ण हिंदू धर्म सामने लाया जाए जो शास्त्रीय प्रमाणों से समर्थित हो, बुद्धि संगत हो, समय की आवश्यकता पूरी कर सके और पूर्व मान्यताओं के साथ संगति बैठाते हुए एकरूपता का आधार बन सके। इस संरचना के लिए समन्वयात्मक दूरदर्शिता की आवश्यकता होगी।
बहुत क्रांतिकारी कर देने पर पुरातन पंथी बिदकेंगे और बहुत प्राचीन करने पर वह असामयिक हो जाएगा। वस्तुतः आज की स्थिति के अनुरूप हमें ऐसे धर्म प्रतिपादन की आवश्यकता है
जो चिर प्राचीन और चिर नवीन का कुशलतापूर्वक समन्वय कर सके। धर्म तत्व का आधार श्रद्धा और भावना है। इस सुकोमल मर्मस्थल को चोट पहुंचाए बिना, अस्त व्यस्त किए बिना, यदि ऐसा ढांचा खड़ा किया जा सके तो ही इसे जन मान्यता प्राप्त होगी, अन्यथा यह एक वर्ग विशेष की मान्यता बनकर रह जाएगी।
अभिनव प्रयास वर्तमान शताब्दी में कितने ही हुए हैं।
प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि सुधारवादी प्रतिपादनों को जिन कारणों से लोक मान्यता न मिल सकी, हमें उन्हें पूरी तरह ध्यान में रखकर चलना होगा। अगले दिनों आवश्यकता ऐसे आत्मदानियों की पड़ेगी जो अति प्राचीन काल की विश्व सेवा साधना को, बौद्धकालीन धर्म विजय भावना की अवरुद्ध धारा को अग्रगामी बनाने के लिए अपने को समर्पित कर सकें।
ईसाई मिशनरी यही करते हैं। वे कौतुक कौतूहल की पूर्ति के लिए अपने सुसंपन्न देशों को छोड़कर भारत जैसे पिछड़े देश में लंबे समय तक आजीवन रहने के लिए नहीं आते, वरन उनके पीछे प्रबल भावनाएं होती हैं और उन्हीं से वे प्रबल नींव के पत्थर बनकर चुपचाप आदिम जातियों के साथ घुल मिलकर आजीवन कष्टसाध्य परिस्थितियों में रहने को तैयार होते हैं। एक और हम हैं जो केवल सैर सपाटे के लिए, लेक्चर झाड़ने के लिए, विज्ञापनबाजी के लिए धर्म की आड़ में विदेश भ्रमण की बात सोचते हैं और उन भोले भाले लोगों की जेब काटकर पैसा बटोरने की दुर्भिसंधियां रचते हैं। ऐसे धूर्त लोग धर्मध्वजी और योगियों का कलेवर उड़कर पिछले दिनों भी विदेश यात्रा पर निकलते रहे हैं, अब भी निकलते रहते हैं। इसी घिनौने मार्ग पर हमारे लोग भी चल पड़े तो समझना चाहिए कि आशा की एक किरण जो बनी थी वह भी बुझ गई। तब समझा जाएगा कि हमारी धर्म बुद्धि समाप्त हो गई है और धूर्तता के अतिरिक्त हमारे पास और कुछ नहीं बचा है। हमें शौकीन तबीयत के उथली उछल कूद करने वाले शेखीखोर लोग नहीं, सुयोग्य आत्मदानी चाहिए जो ठीक ईसाई मिशनरियों की तरह अपना जीवन ही उस कार्य के लिए समर्पित कर दें, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से पूरी तरह हाथ धो लें। इस वर्ग के अंतर्गत लोगों को उपरोक्त विशेष प्रयोजन के लिए लंबे समय तक प्रशिक्षित करना पड़ेगा और यदि वे निश्चित कसौटियों पर खरे उतरे तो उन्हें जहां तहां प्रचार करने फिरने की बंदर धूम मचाने के लिए नहीं, वरन किसी देश विशेष में लंबे समय तक रुकने बसने की तैयारी के साथ भेजा जाएगा। थाईलैंड में जा बसे स्वामी सत्यानंद जी का उदाहरण इस संबंध में हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। वे उसी देश में खप गए और भारत की आत्मा को थाईलैंड के रक्त में मिलाने के लिए अनवरत रूप से बहुमुखी चेष्टाएं करते रहे।
उनका मिशन बहुत सफल रहा।
अन्य देशों में भी ऐसे ही मिशनरी भेजे जाने की आवश्यकता है जो कम से कम प्रवासी भारतीयों में हिंदी प्रचार का, सांस्कृतिक परिचय का, धर्मनिष्ठा की परिभाषा की परिपक्वता का, पौरोहित्य का प्रयोजन पूरा करते रह सकें। इससे आगे बढ़कर उनसे उस देश की जनता को भारतीय धर्म में दीक्षित करना न बन पड़े तो वे उस महान तत्वज्ञान को हृदयंगम कराने की पृष्ठभूमि तो बनाते ही रहें।
ऐसे लोग अविवाहित होने चाहिए।
उनके पत्नी बच्चों का खर्च वहन करना भारी पड़ेगा और वे इस जंजाल में उलझे रहने की स्थिति में कुछ अधिक काम भी न कर सकेंगे। भारत में रहकर भी विश्व प्रसार के लिए बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है।
उन देशों के उपयुक्त साहित्य का निर्माण, पत्र व्यवहार, भारत में इस प्रयोजन के लिए उत्साह उत्पन्न करने वाला प्रचार साहित्य, निर्यात किए जाने वाले साधनों की व्यवस्था जुटाना, प्रचारकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, विदेशों से भारत आते रहने वाले संस्कृति प्रेमियों का संपर्क, स्वागत एवं सहयोग, अभीष्ट प्रयोजनों के लिए विविध विधि परिचय साहित्य का प्रस्तुतिकरण, इन प्रयोजनों के लिए दौड़ धूप आदि आदि अनेक कार्य ऐसे हैं जिन्हें भारत में रहकर ही करना पड़ेगा।
इसके लिए भी आत्मदानी ही चाहिए। वे गृहस्थ भी हो सकते हैं, उनका परिवार लंबा और भाररूप न हो तो वे भी कुछ हाथ बंटा सकते हैं। ऐसी दशा में उसका भी स्वागत हो सकता है, पर जहां तक हो इस प्रकार के मिशनरी प्रयोजनों में अविवाहित अथवा गृह निवृत्त वानप्रस्थ स्तर के लोग ही ठीक पड़ते हैं।
शर्त यह है कि वे उपरोक्त प्रयोजन के लिए सुयोग्य हों, निर्लोभ हों और शारीरिक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रह रहे हों।
एक कार्य इतने पर भी शेष रह जाएगा,
वह है इस प्रयोजन के लिए अर्थव्यवस्था का जुटाया जाना।
यूं इन सब कार्यों को कोई एक धनी भी अपने बलबूते पूरा कर सकता है और धर्म एवं संस्कृति की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता को भामाशाह की तरह एकाकी भी पूरा कर सकता है।
यदि प्रयोजन की महत्ता समझी जाए तो अशोक के बुद्ध प्रतिपादित धर्मचक्र प्रवर्तन की और मारधाता द्वारा शंकराचार्य के धर्म संस्थापन की पुण्य परंपरा को पुनर्जीवित करना किसी एक धनी व्यक्ति के लिए संभव हो सकता है।
ऐसे सुसंपन्न लोगों की भारत में कमी नहीं है।
यदि एकाकी साहस न जुट सके तो कितने ही छोटे छोटे सहयोगी मिलकर भी कन कन जोरे मन जुरे, बूंद बूंद से घट भरे वाली उक्तियां चरितार्थ की जा सकती हैं।
इसके लिए जनसहयोग आमंत्रित किया जा सकता है और यह बात सही रीति से उपयुक्त व्यक्तियों को समझाई जा सके तो उसकी कुछ न कुछ पूर्ति भी हो सकती है। साधनों के अनुरूप कदम बढ़ाने की बात भी सोची जा सकती है। यूं बड़े और दुस्साहसपूर्ण कदम ही बड़े प्रयोजन पूरे कर सकते हैं, पर वैसा न बन पड़े तो न कुछ से कुछ होना भी क्या बुरा है। किसी प्रकार किसी कदर कुछ कदम तो हमें बढ़ाने ही पड़ेंगे।
शुभारंभ श्री गणेश तो करना ही होगा। भगवान करे इस पुस्तक का लेखन और प्रकाशन इस प्रकार का उत्साह भारतीय जनमानस में उत्पन्न करे जैसा कि भूतकाल में हमारे पूर्वजों द्वारा विश्व कल्याण के लिए उमकता उफनता रहता था।
इसी की संक्षिप्त सी झांकी प्रस्तुत पुस्तक में है। आशा की जानी चाहिए कि पाठक उससे कुछ ग्रहण करेंगे और सोचेंगे कि उस पुण्य परंपरा को पुनर्जीवित करने में अपनी स्थिति के अनुसार क्या कुछ सहयोग करना संभव है।
युग निर्माण योजना इस दिशा में खुद कदम उठाने जा रही है।
आवश्यकता है इस प्रयाण में अन्य कदम भी उठें और कंधे से कंधा मिलाकर इस उत्तरदायित्व का बोझ उठाने के लिए अनेक साहसी भाव संपदा से भरे पूरे शूरवीर आगे आएं।
मुद्रक युग निर्माण योजना मथुरा।